Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad Bhumika, presented by Swami Sri Jagdish Puriji. Thank you. Om Namah Shivaya.
प्रकाशम् मुमुक्षुरु वै शरणमहं प्रपद्ये ओम शान्तिः 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 शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवत व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।
दो मिनट भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे।
हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गो दहे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गो गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गो कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण
गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद
कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गो
गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद
हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गो कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण
गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद
कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गो हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गो हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गो कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण द कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद सच्चिदानंद भगवान की सत्य सनातन धर्म की सद्गुरुदेव महाराज की गोपाल कृष्ण भगवान की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आनंद कंद भगवान नारायण की असीम अनुकंपा से प्रतिवर्ष की भांति इस मंच पर बैठकर इस वर्ष का वेदांत चिंतन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। प्रेमपुरी आश्रम के अधिष्ठात्री देव ब्रह्मलीन परम सद्गुरुदेव स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज के अव्यक्त चरणों में कोटि से वंदन। प्रेमपुरी आश्रम में प्रतिदिन सत्संग स्वाध्याय का आनंद प्राप्त कर रहे प्रिय श्रोतृवृंद, विचार कर रहा था कि किस पर कुछ सुनाया जाए। कल या परसों ऑफिस से फोन गया था गावड़ी जी का कि आप किस विषय पर सुनाएंगे। मैंने कहा सुनाना क्या है गावड़ी जी, जो खाते हैं उसकी डकार आती है, जो अंदर होगा वही तो बाहर निकलेगा और आएगा कहां से। तो कहा कि कोई उपनिषद, मैंने कहा वेदांत विचार लिख दीजिए कुछ सुना देंगे वेदांत चिंतन। तो शायद उन्होंने कहा कि आपकी कठोपनिषद की कोई कैसेट मैंने यहां नहीं सुनी और ये सुनाए तो ठीक है। मैंने कहा तुम्हारी मर्जी। तब विचार बना कि फिर कठोपनिषद का कुछ विचार किया जाए, परंतु कठोपनिषद को यदि अक्षर से हम लोग करना चाहेंगे तो संभव नहीं है। अक्षर से करने के लिए तो स्वाध्याय की जरूरत है। जो लोग प्रतिदिन स्वाध्याय करते हैं क्रम से उसका अध्ययन किया ही होगा और करेंगे। यहां सारांश रूप में कठोपनिषद का विचार किया जा सकता है। एक एक मंत्र को क्रमशः ज्यों का त्यों और विस्तार से लिया जाए प्रवचन में यह संभव नहीं है, परंतु फिर भी प्रयत्न यह रहेगा कि सारांश में भी कुछ छूटे नहीं, जितना हो उतना ठीक से हम लोग उसको पकड़ करके चल सके, ऐसा उस पर थोड़ा विचार करने का प्रयास करेंगे। भगवान की कृपा से कठोपनिषद इतना सुंदर उपनिषद है जिस पर विचार करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। कठोपनिषद का जब भाष्य प्रारंभ करते हैं तो आदि जगद्गुरु भगवान शंकराचार्य महाराज ने कठोपनिषद के वक्ता और श्रोता दोनों को वंदन किया है। माने इसका जो वर्णक है, इसका कथानक है, इसके श्रोता और वक्ता है, दोनों ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए भगवान शंकराचार्य महाराज अपने लेखनी में सबसे पहले यही लिखते हैं यहां पर, ओम नमो भगवते व्यवस्वताय मर्त्येवे ब्रह्म विद्या आचार्याय नचिकेतसे च। भगवान मृत्यु को, ब्रह्म विद्या के आचार्य को, सूर्य पुत्र को, मैं प्रणाम करता हूं। और साथ ही उनके शिष्य रूप में प्राप्त जो उच्च कोटि का साधक नचिकेता है उसको भी हम प्रणाम करते हैं। ऐसा करके भाष्यकार ने वहां बड़ा बड़ा सुंदर विचार किया है। यह कठोपनिषद, प्रथम तो विचार यह करना कि इसको कठोपनिषद क्यों बोलते हैं, उपनिषद क्या चीज होती है। सज्जनों, हमारा जो सनातन धर्म है उसको वैदिक सनातन धर्म बोलते हैं। हमारा वेद शास्त्र सनातन है, उसका कोई प्रारंभ या उसकी कोई कृति उत्पन्न करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। वेद तो ईश्वर प्रणीत है, ईश्वर के संकल्प से प्रकट हुआ है। यस्य निःश्वसितम् वेदः, ऐसा करके लिखा है। जैसे हम लोग श्वास लेते हैं और वह श्वास अनायास आता और जाता रहता है, गति निर्बाध चलती रहती है, ऐसे ही सहज में भगवान के द्वारा वेद प्रकट होता है। वो वेद अनादि है, अपौरुषेय है, किसी व्यक्ति की कृति नहीं है। वेद के जितने भी मंत्र होते हैं उन मंत्रों के दृष्टा आपको अवश्य मिलेंगे, लेकिन मंत्र का कर्ता एक भी नहीं मिलेगा। दृष्टा माने जिन्होंने उन मंत्रों को देखा है, लेकिन कोई भी ऋषि ये दावा नहीं कर सकते या किसी भी ऋषि के साथ हम दावा नहीं कर सकते हैं कि उन्होंने इस मंत्र को बनाया है, इसके कर्ता है। जैसे गायत्री मंत्र, अब गायत्री मंत्र के जो दृष्टा है विश्वामित्र ऋषि माने जाते हैं, परंतु विश्वामित्र ऋषि ने इस मंत्र को बनाया हो ऐसी बात नहीं है। मंत्र तो अपौरुषेय है, ये मंत्र नित्य होते हैं। बस जो है हमारे प्राचीन ऋषि महर्षियों ने अत्यधिक साधना के द्वारा अपने चित्त को निर्मल किया, और उस निर्मल चित्त में ये जो ईश्वर प्रणीत वैदिक ज्ञान है वो प्रतिभात होता है, वो प्रकट होता है, था वही प्रकट होता है। यह भी वेदांत का कटु सत्य है कि जो है नहीं वो वस्तु कभी भी पैदा नहीं हो सकती है, जो है उसी का प्राकटन होता है, नहीं है वो कभी भी नहीं हो सकती है। ये जो वैदिक मंत्र है ये थे, पहले से विद्यमान थे। हमारे ऋषियों ने महर्षियों ने इन मंत्रों को प्रकट किया है, चित्त की शुद्ध अवस्था में उनका दर्शन किया है। इसलिए जिन मंत्रों को, जिन उपनिषदों आदि को जिन ऋषियों ने देखा है उनके नाम से वो मंत्र उपनिषद आदि प्रसिद्ध हो गए हैं। हमारा जो वेद शास्त्र है वो वेद शास्त्र मुख्यतः तीन भाग में विभक्त करके देखा जा सकता है। चार वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चारों वेदों का जो वक्तव्य है वो तीन भाग में देखा जा सकता है। पहला है कर्मकांड भाग, दूसरा है उपासना भाग और तीसरा है ज्ञान भाग। वैसे भी प्रसिद्धि है कि वेद के कुल 100,000 मंत्र माने गए हैं, और उन 100,000 मंत्र में से 80,000 मंत्र कर्म भाग के हैं। ऐसा कर्म करो, इस कर्म की ये विधि है, और इस विधि से अमुक कर्म संपन्न करने पर आपको अमुक इष्ट फल की प्राप्ति होगी। ऐसा करो, इसका फल ये होगा, इसकी विधि ये है। ये सब बताने के लिए 80,000 मंत्र वेद के माने गए हैं। दूसरा उपासना भाग आता है जिसमें 16,000 मंत्र माने जाते हैं। 16,000 मंत्र करने के शारीरिक या बाह्य विधि की प्रधानता नहीं देते, अपितु मानसिक चिंतन की प्रधानता देते हैं। अमुक प्रकार से चिंतन करो, अमुक प्रकार से ध्यान करो, अमुक प्रकार की भावना करो, और इस भावना को करने से तुम्हें अमुक फल की प्राप्ति होगी। इसका प्रयोजन यह है, इसका फल यह है। वो उपासना है जहां एक इष्ट को स्मरण कराया जाता है, और मानसिक चिंतन, मानसिक पूजा आदि ही उसका कर्म है। बाह्य कर्म गौण है, मानसिक चिंतन प्रधान होता है वो उपासना संबंधी 16,000 मंत्र माने जाते हैं। शेष 4,000 जो मंत्र बचे हैं वो 4,000 मंत्र ज्ञान परक है। वो 4,000 मंत्र उस कर्मी को, उस उपासक को, जब कर्म और उपासना के द्वारा उसका चित्त निर्मल और स्थिर हो जाता है, ऐसी स्थिति में ये 4,000 मंत्र उसे अपने आप का ज्ञान करवाते हैं, अपने स्वरूप का बोध करवाते हैं। और वो स्थिति अपने स्वरूप को जानने की, उससे पूर्व यदि जानने की क्षमता, जानने की योग्यता नहीं है तो साधक पढ़ करके भी अपने स्वरूप का निश्चय नहीं कर पाएगा। इसलिए कि प्रत्येक व्यक्ति का जो मन या अंतःकरण का हो, उस अंतःकरण में कुछ दोष होते हैं और जब तक दोष का निवारण नहीं होगा तब तक अपने आप का दर्शन, अपने आप का साक्षात्कार वो नहीं कर सकता है। इसलिए पहले उसे अपने चित्त को निर्मल, स्थिर और साक्षात्कार करने के योग्य बनाना पड़ता है। वो जो 80,000 मंत्र आए हैं, ये नहीं समझना कि वो उन लोगों के लिए जो केवल अज्ञानी है, नहीं, वो मंत्र उन लोगों के लिए है जो अपने आप का दर्शन करना चाहता है। वो मंत्र उन लोगों के लिए है जो संसार बंधन से मुक्त होना चाहता है, परंतु संसार बंधन से केवल चाहने से मुक्त नहीं होता है। ये जैसा बंधन है उस बंधन को काटने के लिए बड़ा प्रयत्न करना पड़ता है, उसके लिए योग्यता अर्जित करनी पड़ती है। जन्म जन्मांतर से जो जीव ने कर्म किए हैं, शास्त्रीय कर्म भी किए, अशास्त्रीय कर्म भी किए, शास्त्रीय कर्म प्राय जीव के बहुत कम होते हैं, प्राय अशास्त्रीय कर्म ही होता है। इसलिए कि व्यक्ति जब भी किसी कर्म में प्रवृत्त होता है तो उस जीव का जो वासना होती है, उसकी कामना होती है, वासना जन्य इच्छाएं, वो इच्छाएं जिस विषय के संबंध में होती है उसको प्राप्त करने के लिए उसके भीतर में कसमकस पैदा कर देती है, कैसे वो विषय मुझे प्राप्त हो। अब वो विषय किसी भी प्रकार से प्राप्त हो, व्यक्ति उसको प्राप्त करने के लिए हजारों तरह के उपाय ढूंढने लगता है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि वासना के वशीभूत होकर के वो शास्त्र की मर्यादा को भी छोड़ देता है, कुल की मर्यादा को भी छोड़ता है, परंपरा को छोड़ देता है, नीति को छोड़ देता है और सिर्फ वासनाओं के अधीन होकर उस कर्म प्रवृत्ति में लग जाता है जिससे वो इष्ट फल उसको प्राप्त हो। और जब भी परंपरा को छोड़ करके, शास्त्र मर्यादा का त्याग करके, मात्र वासना का गुलाम बनकर के किसी कर्म में जब यह जीव प्रवृत्त होगा तो अशास्त्रीय कर्म ही होगा, निषिद्ध कर्म ही होगा, जिस कर्म में पुण्य के बजाय पाप उपस्थित हो जाएगा। और जो जो पाप कर्म बढ़ते जाएंगे उसका चित्त, उसका मन मलिन होता जाएगा, उसके ही अंतःकरण में आने वाली अच्छी भावनाएं दबती जाएगी, धीरे 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 पाप कर्म का प्रभाव बढ़ने लग जाता है और उसका पूरा मन पापमय बन जाता है, फिर गलत विचार को गलत समझता ही नहीं है। ऐसे अनादि काल से अशास्त्रीय कर्म करते करते थोड़ा कोई संयोग मिलता, कुछ शास्त्रीय कर्म भी हो जाता है। ये दोनों प्रकार के जो शास्त्रीय अशास्त्रीय कर्म है, इनको बोलते हैं पुण्य और पाप कर्म है। अशास्त्रीय कर्म होंगे वो पाप कर्म होंगे, शास्त्रीय जो कर्म होंगे, शास्त्र से विधान किया हुआ, वो पुण्य कर्म होंगे। दोनों प्रकार के कर्म हर व्यक्ति के अंतःकरण में पड़े हुए हैं, मगर यह भी सच्चाई है कि यदि 10% पुण्य कर्म है तो 90% पाप कर्म भी पड़े हुए होंगे, क्योंकि अधिकतर वासना के अधीन होकर के अशास्त्रीय कर्म में ही प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण हमारा मन इतना मलिन हो जाता है, इतना गंदा हो जाता है, जैसे किसी नाली में जाने वाला पानी, पानी की मात्रा तो कम होती है और गंदगी उसमें और ज्यादा मिल जाती है। स्वच्छ पानी कम है, गंदगी से मिश्रित जल ही ज्यादा होता है। ऐसे ही पाप कर्मों से मिश्रित जब हमारा अंतःकरण हो जाता है, उस अंतःकरण को पहले शुद्ध करना बहुत जरूरी है। हमारा लक्ष्य है हम अपने आप को देखें, अपने स्वरूप को देखें, हम परम आनंद को प्राप्त करें। उस लक्ष्य को पाने के लिए हम लोग कर्म कर रहे हैं, परंतु यदि अशास्त्रीय कर्म होगा तो और चित्त मलिन होता जाएगा। इसलिए शास्त्र के वेद के 80,000 मंत्र बोलते हैं, ऐसे कर्म करो जिससे तुम्हारा मन निर्मल हो जाए, मलिनता समाप्त हो जाए, चित्त साफ हो जाए। जैसे किसी दर्पण में अपना मुख देखना हो तो सबसे पहली शर्त यह है कि उस दर्पण को निर्मल बनाना पड़ेगा, उसके ऊपर चढ़ी हुई गंदगी को, धूल को, मिट्टी को हटाना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा। ऐसे हमारा अंतःकरण मन रूपी जो दर्पण है, इन 80,000 मंत्रों में बताए हुए कर्म के द्वारा पहले उसको निर्मल किया जाता है। चित्त निर्मल होने पर भी उसकी चंचलता अभी भी विद्यमान रह जाती है। जैसे दर्पण को साफ कर देने पर भी यदि हवा के झोंके लग रहे हो, पंखा फैन चल रहा हो, तो धीरे 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 दर्पण हिल रहा है। दर्पण की हिलने से आप जब अपना प्रतिबिंब देखना चाहेंगे तो स्थिर नहीं दिखाई पड़ेगा, उसमें कंपाईमान होता हुआ दिखाई पड़ेगा, आपको अपने आप में स्थिरता मालूम नहीं पड़ेगी। ऐसी स्थिति में यह भी आवश्यक है कि हम उस दर्पण को स्थिर करें, हवा के जो झोंके हैं उसको रोक दें, स्थिरता आएगी तब हम अपना मुंह देख पाएंगे। ऐसे ही मन में जो जन्म जन्मांतर की बैठी हुई वासनाएं हैं, इन वासनाओं के बार बार झोंके आते हैं, यह मन को हिला देती है, मन में अस्थिरता आ जाती है, जिससे हम जैसे हैं वैसे अपने को देख नहीं पाते हैं। इसलिए फिर आए 16,000 मंत्र, उपासना मंत्र आते हैं, वो मन को स्थिर करने का प्रयास करते हैं। मन को किसी एक विषय पर, एक आलंबन के ऊपर आप स्थिर करिए, आपकी जो चित्त वृत्ति, मन की वृत्ति निकल रही है, उसको किसी एक लक्ष्य के ऊपर स्थिर कर दो। जब हमारी चित्त वृत्ति एक ही लक्ष्य को विषय बनाएगी, बार बार चित्त की वृत्ति निकलती है और उसी विषय को ग्रहण कर रही है, एक जगह पर स्थिर हो रही है। जैसे तेल धारा, तेल को जब गिराते हैं तो एक दिशा में तेल की धारा जाएगी, तेल धारावत अपना मन की वृत्ति है उसका एक दिशा में प्रवाह हो जाए, उससे मन का जो कंपाई मानता है, विचलितता है, मन की जो अस्थिरता है, वो अस्थिरता समाप्त होकर के एक स्थिरता आएगी, एक दिशा बनेगी। उस स्थिति में हम अपना मुंह दर्पण में देखने की क्षमता के समान चित्त में अपने आप को देखने की क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। परंतु फिर भी यदि कोई आवरण है, दर्पण साफ और स्थिर है मगर उसके ऊपर कोई डला हुआ कपड़ा है, वस्त्र डला हुआ है, ऐसी स्थिति में हम अपना प्रतिबिंब उस दर्पण में ज्यों का त्यों नहीं देख पाएंगे। तब आवश्यक होता है कि उसके ऊपर का जो आवरण है वो भी हटाया जाए, अथवा यूं कहो दर्पण साफ है, दर्पण स्थिर भी है, लेकिन लाइट गुल हो गई और कमरे में अंधकार हो गया। साफ दर्पण है, स्थिर दर्पण है, लेकिन अंधकार है, उस स्थिति में उस दर्पण में हम अपना प्रतिबिंब कभी नहीं देख सकते। अब आवश्यक है कि वहां पर प्रकाश उत्पन्न किया जाए। दर्पण साफ था, स्थिर था, और जब प्रकाश हो गया है तो प्रकाश होते ही अंधकार समाप्त हो जाता है, और जब अंधकार समाप्त हुआ तो अपने आप अपना प्रतिबिंब उस दर्पण में दिखाई पड़ेगा। कैसा? हम जैसे हैं वैसा का वैसा, क्योंकि दर्पण स्थिर है और साफ है और प्रकाश पूर्ण है। ऐसी स्थिति में जैसे हम हैं वैसे के वैसे अपने को देख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो हमारा अंतःकरण है वो भी उस दर्पण की तरह हो जाए, जो साफ और स्थिर है, परंतु फिर भी अंतःकरण के ऊपर अविद्या, अज्ञान का आवरण पड़ा हुआ है। उस अविद्या, अज्ञान आवरण को हटाने के लिए वेद के 4,000 मंत्र माने गए हैं। उन 4,000 मंत्रों को बोलते हैं वेदांत, उन 4,000 मंत्रों को बोलते हैं उपनिषद। अब विस्तृत इस वेद में भिन्न भिन्न शाखाएं होती है, जुदा जुदा परंपराओं से स्वाध्याय क्रम चलता है। और वेद में प्रत्येक वेद की अलग अलग शाखाएं मानी जाती है। कुल मिलाकर के चारों वेदों की 1180 शाखाएं मानी जाती है और प्रत्येक शाखा के अंत में एक उपनिषद होती है। प्रत्येक शाखा का समापन उपनिषद से ही होगा। इस प्रकार से यदि गिनती की दृष्टि से हम देखते हैं तो वेद की 1180 शाखाएं हैं और 1180 शाखाओं के प्रत्येक के अंत में एक एक उपनिषद मानी जाए तो कुल मिलाकर के उपनिषदों की संख्या होगी 1180। लेकिन काल का दुष्प्रभाव